ये आकाशवाणी है। अब आप अभिषेक कपिल से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से शामिल हो रही है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो महत्वपूर्ण है। इनमें स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से नारी सम्मान सुनिश्चित करना, जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर नारी सशक्तिकरण शामिल है। श्री मोदी ने उज्ज्वला योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे कई घरों की रसोई धुआं मुक्त हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि मुद्रा ऋणों से लाखों महिलाओं का उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे है। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण 92% और राज्य ने रोगी सेवा के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने में सर्वाधिक उच्च स्थान हासिल किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि कमान और नियंत्रण केंद्र समन्वयक के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस केंद्र से 25,000 अस्पताल और जोड़े जाएंगे।
डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बहुत सारे फायदे हम लोग को दिख रहे हैं। रियल टाइम हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, सारी मॉनिटरिंग होती है। साथ ही साथ हम लोग इसके थ्रू किस तरह से पेशेंट की जर्नी को आसान बनाए, कम समय लगे, उनको कम परेशानी हो, दवा ढंग से मिल जाए, सारे टेस्ट हो जाए और फाइनली उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी जनरेट हो जाए, ताकि वो भविष्य में अगर किसी फैसिलिटी पे जाता है तो उसके पास कोई सूचना नहीं रहने पे भी आभा लिंक्ड उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बन रहा है।
थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम सैन्य चौकियों पर तैनात सैन्य बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वहां सैनिकों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने सैनिकों से परिचालन तैयारियों में उच्च मानकों को बनाए रखने और निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। पर शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कलाओं से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। थलसेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुछ पूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर जन विरोधी नीतियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मदुरै में पार्टी की बैठक में डीएमके पर 39,775 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। श्री अमित शाह ने कहा कि डीएमके सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। श्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में अपराध करने वालों को सबक सिखाया गया है।
मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज से फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिन की यात्रा पर हैं। डॉक्टर जयशंकर फ्रांस में विदेश मंत्री जैन नोएल बैरोट के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और योजनाकारों तथा मीडिया से बातचीत करेंगे। वे भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता में भी शामिल होंगे। यूरोपीय संघ की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय संघ के शीर्ष प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कलास के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। वे यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सांसदों से भी मिलेंगे। बेल्जियम में डॉक्टर जयशंकर का उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिमम प्रीवोट के साथ विचार विमर्श का भी कार्यक्रम है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में बुधवार तक लू चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।